भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः। कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली का तीसरा मंत्र है और इस मंत्र में सृष्टि की अनुशासिता के रूप में ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण सृष्टि का वो जनक है, पालन पोषण करने वाला है और अंत में उसका विनाश भी करने वाला है। जो मूल तत्व हैं ब्रह्म तत्व, उसी के अनुशासन में सृष्टि की जन्म पालन और विनाश की क्रियाएं चलती हैं। अनुशासन में भय होता है और बिना भय अनुशासन नहीं होता है और इसी भय से संपूर्ण सृष्टि का ये चलन व्यवस्था व्यवहार चल रहा है। समष्टि में और व्यष्टि में भी, एक व्यक्ति के रूप में भी व्यक्ति पर किसी न किसी का अनुशासन होता है, किसी न किसी का भय होता है, इसलिए व्यक्ति का जीवन चलता है। एक परिवार के रूप में भी अनुशासन है, भय है। एक समाज के रूप में, सामाजिक रूप में भी हमारे जीवन में भय है और इस राष्ट्रीय रूप में कानून के रूप में भी भय है कि कहीं कानून का उल्लंघन ना हो, प्रकृति के तत्वों के नियमों का भय है, ईश्वरीय कानून का भय है और ये संपूर्ण भय हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन का मूल आधार ही भय है। भय के बिना हमारा जीवन एक क्षण भी संभव नहीं है। आप सुबह उठने से लेकर मरने शैया पर जाने तक, जन्म से लेकर मरने तक अनेकों प्रकार के भयों से होकर गुजरते हैं और वो भय हमारे जीवन में वरदान है, अभिशाप नहीं है। आप सुबह उठते हैं और उठकर जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं के मूल में भी भय होता है। आप सुबह चाय पीते हैं तो डरते डरते पीते कि बिना डरे पीते हैं? आपको लगता होगा कि बिना डरे पीते हैं, लेकिन बिना डरे आप चाय पियोगे तो अपना मुख जला लोगे। आप वो गिलास अपने मुख में लगाते हो ना तो डरते डरते लगाते हो। आप बच्चे के हाथ में गिलास दे देना, वो बिना डरे वो मुख डाल देता है और उसके बाद उसका मुख जल जाता है, वो रोने लगता है। वहां भय है, मुख जलने का भय आपको बहुत सावधानी से चाय पीने की प्रेरणा देता है। आप नाश्ता करते हैं तो डरते डरते करते कि बिना डरे करते हैं? डरते डरते करते हैं, कहीं पेट न खराब हो जाए, गला न खराब हो जाए। यदि अस्वस्थ होने का भय न हो, गला खराब होने का भय न हो, पेट खराब होने का भय न हो, तो आप बहुत कुछ खा लेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। और ये जो बीमारी का भय है ये बुरा नहीं है। आपको डॉक्टर बोल देता भैया ये मत खाना, ये खाने से तुम्हारा गला खराब होगा, आपके मन में एक भय पैदा हो गया और ये भय पैदा होना बहुत जरूरी है, ये आपको अनुशासित कर देगा। आप कोई भी क्रिया करते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो भी डरते डरते, रास्ते में कहीं टकरा न जाए गाड़ी, वो भय है। और इसलिए आप अनुशासित होकर अपने दिशा में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं। आप गाड़ी से उतरते भी हैं तो धीरे धीरे, डर कहीं गिर न जाए। आप सीढ़ियां भी चढ़ते हैं तो डरते डरते, और यहां तक कि आप कुर्सी पर भी बैठे तो हाँ डरते डरते कहीं गिर न जाए। दुनिया में ऐसा जीव असंभव है जहां जीवन है, जहां भय ना हो। और ये भय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप पारिवारिक रूप में एक दूसरे से डरते हैं, बच्चे आपसे डरते हैं, आप पत्नी से डरते हैं, पत्नी आपसे डरती है। और ये स्वीकार करने में भी डरना नहीं चाहिए। यहां कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपने पत्नी से नहीं डरता, और किसी की पत्नी भी नहीं होगी जो अपने पति से नहीं डरती। और ये दोष भी नहीं है, एक दूसरे का भय, एक दूसरे का भय अनुशासन पैदा करता है। और ये समष्टि जो दुनिया है वहां से भय शुरू है, एक व्यष्टि के साथ जुड़ा हुआ भय वैसे समष्टि के साथ भी है। ये भय केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं है, ये समष्टि के साथ है। एक चींटी में भी भय है। आप चींटी को थोड़ा इशारा कर देना, अंगुली दिखा देना, वो भागना शुरू कर देती है। मकड़ी आपके पास आते ही वो उछल जाती है, दूर भाग जाती है, वहां भय है। शेर भी आपको देख करके भागने लगता है, वहां भी भय है। इंद्रादि देवताओं में भी भय है। दुनिया में जीव तत्व बिना भय संभव ही नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कहां डरना है और कहां नहीं डरना है, कितना डरना है और कितना नहीं डरना है। आप आवश्यकता से ज्यादा डरते हैं तो एक बीमारी है, और आप आवश्यक ढंग से डरते हैं तो आपका जीवन है, अनुशासन है, जीवन का निर्माण है। यहां पर श्रुति यही तो कह रही है, भयादग्नि स्तपति, भयात तपति सूर्य। अग्नि ही तपति भयात। आपके सामने पांच भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और एक काल भी। ये शरीर हैं पांच भौतिक, आपके पास इंद्रियां भी। ये पृथ्वी जो है इतना अनुशासित होकर सूर्य की परिक्रमा करती है, इसके मूल में कोई अनुशासन है। अभी यहां पर व्यवस्थित बैठे हैं आप, वहां एक अनुशासन है, सबके ऊपर अनुशासन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अनुशासन दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अनुशासन आपको व्यवस्थित करता है। यहां जो भी व्यक्ति है एक अनुशासन में बंधा हुआ है, और अनुशासन के मूल में एक अदृश्य भय है। ऐसे समष्टि दुनिया में बहुत सारी चीजें बहुत व्यवस्थित हैं। ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और वो परिक्रमा करती है तो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से। आप कभी अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं यदु बाबू जी, थोड़ा लेट भी जग सकते हैं, आप थोड़ा लेट सो भी सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी कभी ऐसा नहीं होता है कि दो मिनट आगे पीछे हुआ, नहीं, वो नियम है, वो सर्कल कंप्लीट करना है, पूरा करना है, किस समय किस दिशा में पहुंचना है, किस समय उसको कहां होना है ये निश्चित है। और केवल पृथ्वी नहीं है, वो हजारों तत्व जो हैं, हजारों अंतरिक्ष के पिंड, नक्षत्र, तारांगन, वो अपनी अपनी कक्षाओं में अपने अपने रास्तों में विचरण कर रहे हैं। एक अनुशासन है, बहुत बड़ा अनुशासन है। यहां केवल पृथ्वी नहीं, ये पृथ्वी का अर्थ केवल ये पृथ्वी आप जैसे गिनाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो आपका जो चंद्रमा है वो पृथ्वी है कि नहीं? आपका मंगल ग्रह पृथ्वी है कि नहीं? अनेकों प्रकार के ग्रह जो हैं वो पृथ्वी हैं। अनंत अंतरिक्ष जो पृथ्वीआत्मक है, भले ही पृथ्वी नाम से आप नहीं जानते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व के रूप में जो अनंत अनंत पृथ्वी तत्व हैं, वो उस चेतन तत्व के अनुशासन में चलते हैं। उसके अंदर एक अपना स्वभाव है, पदार्थ का अपना एक स्वभाव है, वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, और छोड़ता भी है तो छोड़ने की उसकी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार छोड़ता है। जैसे जलीय तत्व, जल के अंदर द्रवता है, जल के अंदर अनेकों प्रकार के गुण है, जीवन है वो, और वो जीवन अपने अंदर धारण करता है जल, और वो जल बन जाता है बर्फ। उसके मूल में भी वो तत्व है, वो एक अनुशासन है, वो एक नियम है। जल के अंदर भी बहुत सारे नियम काम करते हैं। और यहां पर कहते हैं कि भयात अग्निस्तपति, यहां तो अग्नि तो उपलक्षण है, यहां समष्टि के अर्थ में आपके सामने अग्नि, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अग्नि, अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अग्नि हमारे पास न होती तो बहुत सारे आविष्कारों का मूल अग्नि तत्व, ये बाहर की अग्नि, भीतर की अग्नि, हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है। आप शरीर को छू के देखेंगे, आपको अग्नि तत्व का अनुभव होगा। जठराग्नि भी है, खाए हुए पदार्थों को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि है, और वो कितनी व्यवस्थित है। आपके खाए पिए पदार्थों को पचाकर उसका रस बनाकर वो शक्ति में, ऊर्जा में वो बदल देती है। और ये अग्नि ना हो तो हमारे अंदर ऊर्जा ही पैदा ना हो। ये भगवान ने अंदर भट्टी बना रखी है, भट्टी में, और आप खाते जाते, पीते जाते, उसको पचाकर, उसका रस बनाकर, ऊर्जा में बदलकर आपके रोम रोम तक पहुंचा देती है अग्नि। और ये बाहर की अग्नि भी, सूर्यस्तपति, अग्निस्तपति, बोले अग्नि तपती है। और ये अग्नि क्या करती है? तपती है, तपती है, तपाती भी है। इसके दोनों स्वभाव है। अग्नि में तापकत्व स्वभाव है, प्रकाशकत्व स्वभाव है। अग्नि प्रकाश देती है, बाहर के पदार्थों को दिखा देती है। वो स्वयं भी तपती है, तपना उसका स्वभाव है, प्रकाश उसका स्वभाव है, और वो दूसरे को तपा देती, दूसरे को गर्म कर देती है। और वो दूसरे को जो गर्म करना है ना, वो दोनों चीजें दिखा भी देना आंख के द्वारा, अग्नि ना हो तो प्रकाश के बिना, अग्नि के बिना आप पदार्थों का दर्शन नहीं कर सकते। और अग्नि को तपाकर उसको परिवर्तित कर देती है। जब बारिश होती है तो आपने कभी जमीन के अंदर हाथ डाल के देखा होगा, उस समय बहुत गर्मी होती है उसमें, ये जमीन गरम गरम हो जाती है, और उस गर्मी के कारण अनेकों प्रकार के बीज वहां अंकुरित हो उठते हैं। वहां यदि गर्मी न मिले भूमि को तो वहां बीज अंकुरित ही नहीं होंगे। और वो अग्नि यदि तपाए नहीं जल को, भाप न बनाए, तो पुनः जल कैसे बनेगा? जल को भाप बनाकर वो आकाश में उठा लेती और वहां पुनः वो बादल बनते, पुनः वो जल के रूप में बरसाते, जहां जल नहीं वहां पहुंचा देती बादल। कैसी ईश्वर की प्रक्रिया है, कैसी ईश्वर की प्रक्रिया। आपको थोड़ा भी 10-20 लीटर भी पहाड़ के ऊपर पानी ले जाना हो तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और वो हजारों लाखों लीटर पानी पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। लाखों लीटर पानी हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है। ये ईश्वर की प्रक्रिया, अग्नि के द्वारा जल को भाप बना देना है, भाप के बादल बनेंगे और वो बादल आकाश से होकर विचरण करेंगे, बहुत दूर दूर तक पानी बरसा देंगे। इसके मूल में अग्नि तत्व है। अग्निस्तपति या अग्नि तपात्नी है, ये जीवन की प्रक्रिया है, ये एक अनुशासन है, और अग्नि हमेशा तपाने का ही काम करती है। हमारे सामने तीन प्रकार की अग्नि हुआ करती है, एक अग्नि दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि और तीसरी आह्वनी अग्नि। दक्षिणाग्नि माने ये दुनिया में जहां भी आपको बाहर अग्नि दिखाई देती है, समष्टि विराट छोटी बड़ी के रूप में, ये दक्षिणाग्नि है। आपने लकड़ी को रगड़ा, अग्नि पैदा हो गई, जंगल जलने लगे, लकड़ियां एकत्रित की, आपने अग्नि जला दी, ये आपको दक्षिणाग्नि कहलाती है। और ये अग्नि जो है ना, पुनः आप इसको चयन करके वैदिक विधान से मंत्रों के द्वारा उसका चयन कर अपने घर में ले आते हैं। इसको बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। पुराने जमाने में वेद विधान से मंत्रों के उच्चारण से विधिवत अपने घर में अग्नि की स्थापना की जाती थी। एक विशेष प्रकार का कर्म था अग्न्याधान कर्म, और अग्न्याधान कर्म करने के बाद फिर आप उसको निश्चित कर लेते थे, अब ये कभी बुझेगी नहीं, हमारे घर की अग्नि कभी नहीं बुझेगी। उस अग्नि को गार्हपत्य अग्नि कहा जाता था। गार्हपत्य अग्नि माने वैदिक मंत्रों के उच्चारण विशेष कर्मकांड के द्वारा आपने उसको अपने घर में स्थापित कर दिया है, अब उसकी आप रक्षा करेंगे और उस अग्नि के द्वारा आप अनेकों प्रकार के कर्म करेंगे। अब वो अग्नि सामान्य अग्नि नहीं रही, वो अग्नि धार्मिक अग्नि हो गई, वो अब सच्चे अर्थों में पावक हो गई, वो पवित्र करने वाली हो गई। अब आप जो भी कर्म करेंगे गृहस्थाश्रम के उस अग्नि को सामने रखकर, अब आपके घर में भोजन बनेगा उसी अग्नि से, और जब आप हवन करेंगे सुबह तो भी उसी अग्नि से, और आप यज्ञ याग करेंगे तो भी उसी अग्नि से। इसलिए उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा धर्म का प्रचार है, कर्मकांड का ज्यादा प्रचार है। इसलिए दक्षिण भारत में आपको अग्निहोत्री, उसको अग्निहोत्री बोलते हैं, अग्निहोत्री त्रैवर्णिक गृहस्थाश्री भी मिलते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो अग्निहोत्री हैं, अपने घर में वैदिक विधान से अग्नि की स्थापना करते हैं और उसी अग्नि के द्वारा वो यज्ञ करते हैं, उसी अग्नि के द्वारा अपने सारे कर्म करते हैं। अब जैसे आपको अग्नि के फेरे लेने हैं तो आप कौन सी अग्नि ले आओगे, माचिस वाली अग्नि, लाइटर वाले अग्नि लाओगे। पुराने जमाने में वो अग्निहोत्री अपने घर में स्थापित जो गार्हपत्य अग्नि उसके द्वारा, और अग्नि के बिना आप कोई भी धार्मिक कर्म नहीं कर सकते। आपको यज्ञ करना है, हवन करना है, अगरबत्ती जलाना है, आरती करना है, प्रसाद बनाना है, अग्नि की जरूरत है। और तीसरी जो अग्नि है एक दक्षिणाग्नि हो गई, गार्हपत्य अग्नि हो गई और तीसरी आहवनी अग्नि। आहवनी मने वही, गार्हपत्य अग्नि में तो सारे कर्म हो जाते हैं और आहवनी मने यज्ञ निष्ठा। आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, बहुत बड़ा यज्ञ आपने अपने पुराणों में सुना होगा। नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का आरंभ हुआ, 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ। एक यजमान संकल्प लेगा और अपने जीवन भर यज्ञ करेगा, उसके बाद फिर वो संकल्प दूसरे को दे देगा, वो दूसरा फिर वो यज्ञ करता रहेगा, वो संकल्प तीसरे को देगा, चौथे को देगा। ऐसे संकल्प लिया गया 1000 वर्ष तक यज्ञ चले। ये आहवनी अग्नि जिसमें आप हवन करते हैं, देवतो देशेन द्रव्य त्यागो यज्ञ, देवताओं को सामने रखकर जो आप द्रव्य का त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं, वही यज्ञ है। इंद्राय स्वाहा, आप बोलते हैं इंद्र को हम ये समर्पित कर रहे हैं, हम अपने स्वत्व का त्याग कर रहे हैं। और ये यज्ञ जो है ना त्यागात्मिका क्रिया है, त्यागात्मिका क्रिया है, आपको छोड़ना है। नमे इति नमः, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। और धीरे धीरे अपने ममता का त्याग करते जाना है, ये छोड़ने की आदत में जाना है। जैसे आप दान करते हैं, दान ही छोड़ने की आदत में जाना है। दान करने से आपको स्वर्ग मिलता हो कि नहीं, ये बात ऐसा नहीं है। आदमी सोचता है कि दान करने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा ये ऊपर वाला नहीं मिलेगा, यहीं का स्वर्ग मिलेगा। और वो यहां का स्वर्ग है वैराग्य। सबसे बड़ा जो सुख है ना वो वैराग्य में ही सुख है। आप स्वर्ग जाना क्यों चाहते हैं? वहां बहुत सुख है, वहां बहुत आनंद है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसलिए आदमी चाहता है कि स्वर्ग जाए। आपको हम बोले कि आप स्वर्ग जाओगे, बोले हाँ। हम बताएं कि वहां भाई पंखा नहीं है, वहां एसी भी नहीं है, वहां बिछोने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं है और बहुत सारे बड़े बड़े डेंगू वाले मच्छर हैं। तो आप जाना चाहेंगे कि नहीं स्वर्ग में? नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपका प्रलोभन डेंगू मच्छर नहीं है, वो तो बहुत दुखद चीज है। आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां बहुत व्यवस्था हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, मस्ती हो, स्वास्थ्य हो। और वो सारी चीजें जो है ना आपके वैराग्य के अंदर है। न चेन्द्रस्य सुखम अस्ति न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविन। आपको स्वर्ग में ले जाना नहीं है शास्त्र को, आपको ले जाना है वैराग्य में, आपको ले जाना है त्याग में, आपको ले जाना है छोड़ने की क्रिया में। आप दान कर रहे हैं, दान करें तो क्या कर रहे हैं, आप छोड़ने की आदत में ले जा रहे हैं अपने आप को। आपने 10 रुपया मंदिर में डाल दिया, आपने 10 रुपये का त्याग कर दिया है। आपने 1000 रुपया डाल दिया, आपने 1000 रुपये का त्याग कर दिया। आप ये अंदर धन की आसक्ति आप कम करते जा रहे हैं, दान करने से धन की आसक्ति कम हो जाती है, भोजन खिलाने से खाने की आसक्ति कम हो जाती है, वस्त्र दान करने से पहनने का जो पागलपन है वस्त्र के प्रति आसक्ति वो कम हो जाती है। आपके अंदर जिसका पागलपन है वो आप दूसरे को देते हैं तो वो पागलपन कम होता जाता है। और ये वैराग्य में सुख है, छोड़ने में, त्याग में। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि त्याग करो, देवतो देशेन द्रव्य त्यागो यज्ञ। बोले यज्ञ करो, यज्ञ आपको प्रलोभन तो दिया स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग जाने की बात नहीं है, आपको धीरे धीरे वैराग्य में ले जाना है। ये यज्ञ है माने देवत्तो देशे न द्रव्य त्यागो यज्ञ। और अग्नि क्या करती है? अग्रे नयती थी अग्नि, ये अग्नि जो है ना वो आगे ले जाती है। अग्नि का अर्थ होता है जो आगे ले जाए, आप में डाला और वो अग्नि आगे बढ़ा देती है। ये अग्नि का स्वभाव ही है, आप जहां भी जो भी डालोगे उसको आगे बढ़ा देती हैं, आगे नहीं बढ़ाती। आपने पेट में रसगुल्ले डाल दिए और उस जठराग्नि ने क्या किया रसगुल्ले को? आगे बढ़ा दिया। आपने पानी पिया और उस अग्नि ने क्या किया उसको? आगे बढ़ा दिया। कच्चे आम थे और आपने उसको थोड़ा पकाया, थोड़ी अग्नि दे दी, तो उस अग्नि ने क्या किया उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। वो आम कच्चे थे तो उसको पका दिया, जो हरे थे उसको पीले कर दिए, उसकी सुगंध नहीं थी उसको सुगंधित बना दिया, पहले खट्टे थे वो मीठे हो गए, पहले कठोर था आम उसको मुलायम बना दिया, उसने उसको आगे बढ़ा दिया। ये अग्नि का स्वभाव है, जहां भी जो भी चीज है उसको वो आगे बढ़ा दे। और जब आप अग्नि कुंड में हवन करते हैं तो आपका जो हवनीय पदार्थ है उसको अग्नि आगे बढ़ा देती है, आप जहां भेजना चाहते हैं वहां भेज देती है, और हमारे जीवन में भी बदल देती है, हमारे जीवन को भी बदल देती है। केवल बाहर नहीं बदलता, हमारे भीतर भी बदलता जाता है, अग्नि बदल देती है, अपने को भी बदल देती है। और ये जो अनुशासन है अग्नि में वो कहां से आया? तो कहते हैं वो परमेश्वर से आया, वो ब्रह्म तत्व से आया, ईश्वर से आया। ये अनुशासन जड़ पदार्थ में अपना नहीं है, अग्नि तो जड़ है, वो चेतन के बिना उसमें ये सुखद परिवर्तन की प्रक्रिया संभव नहीं है। भयात अग्निस्तपति, एक तपति शब्द का प्रयोग करके उन्होंने तपन आपको बता दिया, लेकिन ये तपन ये बहुत सारे परिवर्तनों का मूल है। और भयात तपति सूर्य, आपके सामने दूसरी चीज है सूर्य, ये सूर्य भी जो है तपते हैं और तपकर बहुत सारी चीजों को बदल देते हैं, बहुत सारी चीजों को ये जीवन प्रदान करते हैं, समष्टि में भी और व्यष्टि में भी। व्यष्टि में आंख आपको रूप दिखाती हैं, और सूर्य का प्रकाश है, ये तीनों चीजें एक ही कक्षा की हैं। ये जो रूप है वो अग्नि का धर्म है, ये आंख है, आंख का देवता सूर्य है, और सूर्य प्रकाश प्रदान करती है। एक बहुत बड़ी व्यवस्था है सूर्य इस आंख की देवता, और वो आंख की देवता का आश्रय लेकर ये आंख जो है वो अपने देवता का जो रूप है ना वो दिखा देती है। इस आंख की देवता सूर्य है, और सूर्य का जो स्वागत धर्म है वो रूप है, अग्नि का धर्म रूप है, और रूप को दिखा देती है। ये सूर्य सबको प्रकाश प्रदान कर, सबके ऊपर तप कर, ये सबके ऊपर उपकार करता है। मैंने आपको कल भी कहा था, ये जो सृष्टि की जो प्रक्रिया है, पैदा होना, रहना, चरम पर पहुंच जाना और अंत में विनष्ट हो जाना। आप इस दुनिया को देख लेते हैं, एक बहुत सुंदर बात मालूम पड़ती है। हमारे शास्त्रों ने ये जो बातें कही ये आपको हताशा और निराशा में ले जाने के लिए नहीं कही है, आपको आनंद और उत्सव में ले जाने के लिए कही। ये दुनिया बनती है, ये दुनिया बनती है और बिगड़ती भी है, लेकिन इसके बनने और बिगड़ने में एक बहुत चरम चीज है, इस बनने की प्रक्रिया में ये पदार्थ अपनी एक चरम अवस्था में पहुंच जाती है। आपने एक बीज बोया और बीज बोने के बाद उसमें बदलाव आया, अंकुर हो गया, अंकुर के बाद फिर वो झाड़ बन गया, झाड़ बनने के बाद फूल आया, फूल आने के बाद फल आया। वो उसकी चरम अवस्था है, वो एक बहुत ऊंचे अवस्था को प्राप्त हो गया, उसका फूल आ गया। आपको झाड़ अच्छा लगता है कि फूल अच्छा लगता है? आपका मन कितना प्रमुदित हो उठता है जब आप किसी सुंदर फूल को देखते हैं, ओहो हो, आप रुक जाते हैं। और वो केवल खिलता ही नहीं है, उसके अंदर सुगंध आ जाती है। सुगंध आपने कभी देखा? रात रानी, रात रानी की सुगंध, वो रास्ते से गुजरते हैं और गुजरते, ओहो क्या आनंद, एक बार रुक जाया तो मन भर गया। एक अंकुर का विकसित होकर बड़ा होना और उसके बाद वो सुगंध में बदल जाना, अब वो अकेला नहीं रहा, वो हजारों लोगों को प्रभावित करेगा, वो हजारों मधुमक्खियों को प्रभावित करेगा, हजारों पशु पक्षियों को प्रभावित करेगा अपने सुगंध से। वो अब वो छोटा सा बीज बीज नहीं रहा, एक अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया हो। और वो केवल सुगंध ही नहीं देता है, वो रस भी देता है। ये मधुमक्खियां जाकर के उसमें से निकाल लेते हैं मधु, उन फूलों से मधु निकाल लेते हैं, वहां से रस भी निकलता है। और वो मधुमक्खियां जब एकत्रित करती हैं तो आपके घर भी पहुंच जाता है वो मधु, आपको स्वास्थ्य मिलता है, आपको आनंद मिलता है, वहां आपको रस भी मिला, आपको वहां पर सुगंध भी मिला और स्पर्श भी, आप छूते ओहो आनंद आ गया। कितना कोमल एहसास है वो, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन पांच गुणों में वो एक अंकुर बदल गया, एक बीज बदल गया और उसकी वो चरम अवस्था है, उसकी वो चरम अवस्था। और उस चरम अवस्था में प्रवेश करने के बाद वो खोता नहीं है, अपनी भविष्य की तैयारी करके चला जाता है, वो बीज बना देता है। अब वो मरा नहीं, वो उसने अपने आप को संरक्षित कर लिया है। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सारी दुनिया तो बदलने वाली, सारी दुनिया मिटने वाली, लेकिन इस दुनिया में ये जो एक सुखद श्रृंखला है, अपने अस्तित्व के चरम तक पहुंचना और वहां पहुंचकर बहुत सारे लोगों को प्रभावित करना, एक से अनेक में बदल जाना और वो अनेकों मानवों को अपने अस्तित्व से प्रभावित करना, एक बीज छोटा सा है और वो पेड़ बन जाता है, फूल बन जाते हैं, सुगंध बन जाता है, रस बन जाता है, फल बन जाता, तो हजारों जीवों को वो प्रभावित करता है। और अब वो एक नहीं रहता, वो अनेकों में बदल जाता है, अनेकों में बदल जाता है, एक बीज लाखों में बदल सकता है, एक बीज लाखों पेड़ों पौधों के रूप में अपने आप को बदल सकता है। ये जैविक प्रक्रिया, और जैविक प्रक्रिया के मूल में तत्व हैं, और वो तत्व कौन है? अग्निस्तपति, सूर्यस्तपति, और उसके मूल में ईश्वरीय तत्व का अनुशासन है। ये सारी जो चीजें हैं ना, वो ईश्वरीय तत्व के बिना संभव नहीं है। अग्निस्तपति भयात तपति सूर्य, और यह भय शब्द का अर्थ या अनुशासन के अर्थ में, भय माने अनुशासन। भयात इंद्रश्च वायुश्च, भय से इंद्र, समष्टि में इंद्र, इंद्र माने शास्ता, इंद्र माने राजा, देवताओं का राजा वो इंद्र है, और वो भी ईश्वरीय अनुशासन, ईश्वरीय शक्ति को लेकर ही मानव मात्र पर शासन करता है। भगवान ने कहा ना, मनुष्यों में मैं राजा हूं, ऐसा बोला, मैं मनुष्यों में राजा हूं क्योंकि अनुशासन करता हूं। और वो जो अनुशासन इंद्र के रूप में, राजा के रूप में है, वो भी ईश्वरीय भय से हैं, ईश्वरीय अनुशासन से हैं। और ये जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियां, ये इंद्रियां भी कितनी व्यवस्थित चलती हैं, आंख देखती हैं, कान सुनती हैं, रसनेन्द्रिय रस का अनुभव करती हैं, त्वचेन्द्रिय त्वचा का अनुभव करती हैं, नासिका गंध का सुगंध का ग्रहण करती हैं। ये इंद्रियां ही इंद्र हैं और ये इंद्रियां जिस तत्व के अनुशासन से चलती हैं, ये आत्म तत्व का अनुशासन, आत्म तत्व का भय है। आंख से आप देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, कान से आप सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, नाक से आप सूंघ सकते हैं लेकिन उसे आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, त्वचेन्द्रिय से स्पर्श कर सकते हैं लेकिन आप सूंघ नहीं सकते, रसनेन्द्रिय केवल रस का अनुभव करती हैं लेकिन आप रसनेन्द्रिय को बोलो कि बाहर की चीजों को देख लो, वो नहीं देखेगी। इसलिए ये जो इंद्रियों में शक्ति हैं, ये इंद्रियों की शक्ति उसी परम तत्व परमात्मा के कारण है, उसी तत्व के कारण है, ईश्वर के कारण है, आत्म तत्व के कारण, उसके बिना ये सब कुछ संभव नहीं। मृत्युर धावती पंचमहा, और ये जो मृत्यु है ना, मृत्यु पांचवी, यहां पांचवी मृत्यु बोल करके उन्होंने, यहां कोई पंचम संख्या का विशेष उल्लेख नहीं है, यहां पांचवा जो अंग है मृत्यु, बोले वो भी ईश्वरीय अनुशासन से चलती हैं। जन्म, स्थिति और मृत्यु, विनाश, ये प्रत्येक पदार्थों के साथ है। और ये जो परिवर्तन है ना, वो विनाश, वो जन्म का मूल है। हम पैदा तो होना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते, लेकिन मरे बिना पैदा होना ही संभव नहीं है। हम पैदा तो होना चाहते हैं लेकिन हम मरना नहीं चाहते, और सत्य तो यही है कि मरे बिना पैदा होने का कोई उपाय नहीं है। आपको हम बोलेंगे कि भैया आप बहुत अच्छे बड़े परिवार में अगले जन्म में पैदा होंगे, आप हां, आप बहुत लंबी लंबी गर्दन हिलाओगे, लेकिन जब बात आएगी मरने की तो बोले भाई मरेंगे नहीं, हम पैदा तो होंगे लेकिन मरेंगे नहीं। लेकिन श्रुति कहती है मृत्यु धावती पंचम, धावती, आप भले ही नहीं चाहे लेकिन वो धावती, वो दौड़कर आपके पास आती है, बलात आपके पास आती है। आप बोल, अरे वो तो बहुत दौड़ के आया मेरे पास, हम नहीं चाहते थे, वो जरा, वो शादी करना चाहती थी, नवयुवती थी वो, नाम भी बहुत मजेदार है उसका, जरा है, लेकिन उसको कोई चाहता नहीं था, जरा से, जरा मेरे बुढ़ापा, उसे कौन शादी करेगा, क्योंकि बुढ़ापे के निकट मृत्यु है। आदमी को मालूम है बूढ़ा होने के बाद आदमी को मरना होता है, इसलिए बुढ़ापे का भय बुढ़ापे के भय से नहीं है, वो मरने के भय से जुड़ा है। उसके साथ कोई भी शादी नहीं कर रहा था। नारद जी महाराज जी मिल गए, ब्रह्मचारी, नारद जी महाराज जी को देख कर वो बड़ी प्रसन्न हो गई, इतना सुंदर ब्रह्मचारी, मैं इसके साथ शादी करूंगा। नारद जी महाराज जी से प्रार्थना की, मेरे से शादी करोगे? नारद जी महाराज ने कहा, नहीं, हम तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर विचरण कर रहे हैं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, इसको आप केवल कहानी की तरह मत लीजिए। और उसके बाद फिर उपाय मिला उनको, अरे बोले जबरदस्ती तुम किसी का वरण कर लो, बोले तुमसे कोई शादी नहीं कर रहा है तो तुमको किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अरे बोले जब यवनराज जो भय बोले जबरदस्ती उसके साथ शादी कर जबरदस्ती, और उसके बाद भागवत का प्रसंग है जबरदस्ती उसने उसके साथ विवाह कर लिया। तो आप में बुढ़ापा आता है वो जबरदस्ती आता है कि स्वेच्छा से आता है? कोई आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई आदमी बदलना नहीं चाहता है। कौन चाहता है कि हमारे बाल सफेद हो? जबरदस्ती हो जाते हैं, जबरदस्ती। कौन चाहता है हम बहरे हो जाए? कौन चाहता है कि हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाए, दांत गिरे? कौन चाहता है? ये बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है, लेकिन बलात् जबरदस्ती ये जरा ये बुढ़ापा वृद्धावस्था आ जाती है। लेकिन नारद जी महाराज जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया भैया? अब यही विशेष बात है, यही यहां पर ये कथा की तरह आप इसको सोचो मत। नारद जी महाराज भगवान के भक्त हैं, नारद जी महाराज शरीर से परे हैं, इसलिए नारद जी महाराज जी बूढ़े नहीं हुए। बुढ़ापा किसको आता है? पीड़ा बुढ़ापा ये किसका धर्म है? बुढ़ापा शरीर का धर्म है, और शरीर यदि आप हैं तो वो बुढ़ापा आपको जरूर आएगा, जबरदस्ती आएगा, जबरदस्ती आएगा। और आपको बुढ़ापे से बचना है तो आपको अपने शरीर से परे होना होगा। आप अपने को शरीर से परे समझोगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, और आप शरीर हैं तो आपको कोई बूढ़े होने से रोक नहीं सकता है। इसलिए बुढ़ापा क्या है? ये मृत्यु का छोटा भाई है। ये जो बुढ़ापा है जरा ये मृत्यु का छोटा भाई है, और वो पहले आ जाता है और उसके पीछे पीछे मृत्यु आ जाती है। इसलिए आपको ये समझना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अच्छा चलो, ये मालूम कब पड़ेगा आपको कि आप शरीर नहीं है? ये मालूम आपको कब पड़ेगा? ज्ञान होने के बाद कि ज्ञान होने के पहले भी? एक आदमी बहुत अच्छे साधक हैं घाटकोपर में, उपेंद्र भाई परे, वेदांत का बहुत अच्छा श्रवण करते हैं, महाराज श्री के बहुत अनन्य भक्त, पुस्तकें पढ़ते थे। वो नटवरलाल पारिक इंडस्ट्री जो है ना, बेकर्स क्लब जो चेंबूर में है, यहां आते हैं कभी कभी आते हैं, यहां की रहे हो ये प्रेमपुरी में। वो दूर से यहां से गुजरते थे, एक दिन अचानक उन्होंने देखा, और देख करके उनके मन में आया कि चलो प्रेमपुरी में क्या होता है, यहां आए सत्संग, बहुत अच्छा लगा। फिर उनको यहां की महाराज जी की पुस्तकें मिली, उनको महाराज जी को देखा नहीं, वो पुस्तकें पढ़ते 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 वो ऐसा सत्संग करते, ऐसी चर्चा होने लगी। तो मैंने पूछा उनको कि आप कब समझोगे कि मैं शरीर नहीं हूं? बोले ब्रह्मज्ञान होने के बाद। मैंने कहा कि वो कब होगा, उसकी प्रतीक्षा कब तक करोगे? हमने कहा आज समझो, आज समझो मैं शरीर नहीं हूं। अच्छा, ये जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं ना, यज्ञ याग आदि करने वाले, वो भी शरीर नहीं समझते अपने आप को। यदि केवल आप अपना ये शरीर ही मैं हूं ऐसा समझेंगे तो आप यज्ञ ही नहीं कर पाओगे। आपको स्वर्ग मिलेगा तो इसी शरीर से मिलेगा कि दूसरे शरीर से मिलेगा? इस जीवन से मिलेगा कि मरने के बाद मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा। तो यज्ञ याग करने वाले आदमी को भी मालूम है ये शरीर यहां नष्ट होगा, हम मरेंगे, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। इसलिए शरीरात्म भाव यज्ञ करने वाले व्यक्ति में भी नहीं होता। आप तो सत्संगी हैं, आप तो वेदांती हैं, आप वर्षों से वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आपको आज ही समझ लेना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं। और जब आप शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो आप बूढ़े होंगे कि नहीं? तो आपको ऐसा कभी लगता है कि नहीं कि मैं बूढ़ा हूं? ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपको क्या लगना चाहिए? ये शरीर बूढ़ा हो रहा है, ऐसा लगना चाहिए। जब स्वामी राम गए अमेरिका, लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि आदमी किसके बारे में बात कर रहा है। लोग समझ ही नहीं पाते थे। स्वामी राम जब अपने बारे में बात करते तो बोलते राम भारत से निकला, जहाज में बैठा, जहाज में एक कोई व्यक्ति मिला राम को, ये बातें हुई। राम ने वहां लेक्चर दिया, लोगों ने कहा बातें किसके बारे में कर रहे हो, ये राम ये कौन है? उन्होंने कहा अरे बोले ये शरीर है राम, ये शरीर है। एक महात्मा आए अखंडानंद आश्रम में, उन्होंने मेरे को बोला कि सुबह से, बोले ये राम जी सुबह से आया है, राम जी सुबह से आया, यहां से राम जी चला जाएगा, बोले दोपहर को ये राम जी भोजन करेगा, बोले ये 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 राम। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि शरीर से अलग। आपको आत्मचिंतन करना हो तो अभी से शुरू करना होगा, इस शरीर को अपने से अलग देखने की आदत डालनी होगी। ये शरीर है हमसे अलग है, जब बुखार आ जाए ना तो ये सोचने का कि इस बुखार का आधार कौन है, शरीर है और मैं दोनों का दृष्टा हूं, उस बुखार को भी मैं देख रहा हूं और इस शरीर को भी देख रहा हूं। आंख, आंख का आधार कौन है, ये शरीर है और ये शरीर कौन है, आपके अंदर शरीर है कि शरीर के अंदर आप हैं? आपके अंदर शरीर है, शरीर के अंदर आप नहीं हैं। आप कौन है भाई? व्यापक हैं आप, व्यापक हैं आप, ब्रह्म हैं, ब्रह्म है ना, ब्रह्म है, आत्मा है आप। यदि ब्रह्म शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता हो तो आप आत्मा बोलो, आप आत्मा हैं और आत्मा व्यापक हैं। तो व्यापक है तो अंदर है, बाहर आकाश की तरह है, तो आप शरीर के अंदर ही कि शरीर के बाहर है? आप बाहर भी अंदर भी हैं, आप व्यापक हैं। ये शरीर, ये दुनिया के सारे जो शरीर है ना, ये शरीर आपके अंदर है। जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं तो आप स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न में आपने हजार लोगों को देखा, वो आपके अंदर थे कि बाहर थे? आप स्वप्न देख रहे हैं और गणेश विसर्जन देख रहे हैं, लाखों लोग आपकी चौपाटी, आप स्वप्न देख रहे हैं ना, लाखों लोग हैं वहां, गणेश जी भी हैं, विसर्जन की प्रक्रिया है, गाजे बाजे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, और वो सारे के सारे लोग जो आपको दिखाई दे रहे थे वो आपके अंदर थे कि बाहर थे? आपके अंदर हैं, वो आपके अंदर दिखाई दे और वो गए कहां? आपके अंदर, वो आपके अंदर पैदा हुए, आपके अंदर ही रहे और उन्होंने गाजे बाजे कहां बजाए? और उन्होंने बहुत सारी कूदा फांदी भी की, वो कहां? आपके अंदर। और वो जब वो चले गए तो कहां गए? आपके अंदर। ऐसे सारी जो ये दुनिया और दुनिया के साथ ये जो हमारा शरीर है ये भी हमारे अंदर है। जब आप आत्मा हैं तो ये शरीर और ये सारी दुनिया की चीजें ये सब आपके अंदर है और रह भी आपके अंदर है, पैदा भी आपके अंदर हुए और वो सारे विलीन होंगे तो आपके अंदर है। इसलिए आपको चिंतन तो करना ही होगा, ये शरीर हम नहीं हैं, शरीर से हम अलग, हम इसके दृष्टा है। आप एक बार निश्चय कर लो कि हम शरीर नहीं है, बस हम तो आत्मा हैं, आत्मा। और ये जनन मरण ये विचरण जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये सब शरीर की, तो आपको बहुत आनंद आएगा, यही तो मोक्ष है। और एक बार यदि आप दृढ़ निश्चय से समझ लिए कि मैं शरीर से अलग हूं, यही तो है, मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग मैं आत्म तत्व। भयाद इंद्रश्च, ये जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों का दृष्टा जो आत्मा, उसी की शक्ति लेकर ये सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। आपकी शक्ति लेकर ये सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, आपकी इंद्रियां लेकर, शक्ति लेकर ये इंद्रियां बाहर के पदार्थों को देख रही हैं। भयाद इंद्र वायुश्च, ये वायु माने आपकी प्राण तत्व श्वास ले रहे हैं। मैंने आपको एक दिन बोला था कि आप कान आंख हाथ पैर बंद करके 5-10 मिनट बैठ सकते हैं। वैसे कभी आप श्वास बंद करके बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठ सकते, हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये प्राण तत्व, बहुत बड़ी शक्ति हैं। लेकिन वो सबसे पहले जो इसको शुरू की, इसने किया ये प्राण तत्व, सबसे पहले हवा इसने किसने भरी, श्वास की प्रक्रिया सबसे पहले किसने आरंभ कराई? आप सो रहे हैं और सोने के बाद भी श्वास चल रही है और अविरल गति से, अबाध गति से आप सो रहे हैं, श्वास चल रही है, और बंद हो जाए तो 5 मिनट बंद हो जाए, आप सो गए और 5 मिनट श्वास बंद हो गई, लेकिन बंद नहीं होती, आप घंटों सोते रहो, वो कौन चलाता है? आप सो रहे हैं और आपके प्राण चल रहे हैं, आपकी श्वास चल रही है, अबाध गति से चल रही है, वो कौन चला रहा है, किसने शुरू किया? तो बोलते वही ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व के कारण श्वास की गमनागमन की क्रिया का आरंभ हुआ और वो निरंतर चलती जा रही है। बहुत सुंदर ये श्लोक हैं, ये मृत्युर्धावती पंचमः, जो सारी जो परिवर्तन की प्रक्रिया है ये जिस ईश्वर के कारण है, बलात् इसमें परिवर्तन कर ईश्वर अनेकों रूपों में पदार्थों को बदल देता है। ये शरीर यहां मिटता है, दूसरे शरीर में व्यक्ति पहुंच जाता है। धावती बलात् आपको भले अच्छा न लगे लेकिन ईश्वर के अनुशासन में सारी चीजें चलती जाती हैं। और इस तत्व को एक बार आप जान ले, बस अनुशासन को जान ले, और इस अनुशासन को जानने के बाद आपको अनुशासता याद आए, हमें अपनी आत्मा याद आए, और हम निरंतर उसी अनुशासता आत्मा परमात्मा में अपने मन को स्थिर करें, उसको जानने का प्रयत्न करें। यह चेत दशक बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। उस तत्व को जानने के लिए कह रहे हैं नारायण, उस तत्व को जानने के लिए कह रहे हैं, उस तत्व को जान लेना चाहिए, और उस तत्व को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जान लेना चाहिए। प्राक शरीर विमोक्षनाद, ये शरीर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व को जानने का उपकरण है, साधन है, और ये साधन जब तक है तब तक उस तत्व को जान लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी जान। ओम नारायण।